باب التيمم في الأكل وغيره. کھانے میں اور کھانے کے علاوہ دیگر چیزوں میں دائیں جانب کا یہ باب ہے. اس سے پہلے بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا تھا, اکل بالیمین کا قائم فرمایا تھا, دائیں ہاتھ سے کھانا. یہاں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جو باب قائم کیے ہیں, جو بتانا چاہتے ہیں, تیمم فی الاکل, دائیں جانب سے کھانا, اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دائیں ہاتھ سے کھانا یہ الگ ہے, دائیں جانب سے کھانا یہ الگ ہے, دونوں میں فرق ہے. تو پہلے بیان فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے, یہ سنت ہے, بلکہ بعض علماء کے ہاں واجب ہے. اور اب بیان فرما رہے ہیں کہ دائیں کھانے میں دائیں جانب اختیار کرنا. سامنے پیالہ رکھا ہوا, برتن رکھا ہوا ہے, یا آپ کی پلیٹ اور رکابی رکھی ہوئی ہے, اجتماعی یا انفرادی طور پر آپ کھا رہے ہیں, تو آپ کی دائیں جانب آپ پہلے اختیار کریں. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے کسی بھی کام کا کرنا وہ زیادہ پسند تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے. چنانچہ اس سلسلے میں جو روایت نقل فرماتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ وقال عمر بن ابی سلمہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینی. عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے, عن عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکے دائیں جانب کو اختیار کرتے تھے, فی طهوره وضو کرنے میں بھی, وتنعله جوتا پہننے میں بھی, وترجله کنگھی کرنے میں بھی. وکانا قال بواسطۃ قبل هذا فی شانہ کلہ, یعنی دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں میں دائیں پہلو کو اختیار کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سنت عمل ہے, اس لیے ہر چیز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بھی ایک حد ہے, وہ میں آگے ذکر کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً طرز یہی ہوتا تھا, عموماً عمل یہی ہوتا تھا, آپ کھانے میں ہوں, پہننے میں ہوں, کنگا کرنے میں ہوں, وضو کرنے میں ہوں, سونے میں ہوں. آپ سوتے بھی تو دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے, اور آپ نے امت کو تعلیم یہی دی ہے دائیں کروٹ پر سو. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب بھی دائیں پیر سے داخل ہوتے تھے, مسجد سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تب بھی دائیں پیر پہلے داخل کرتے تھے. تو ہر چیز میں آپ نے تیمم کو, دائیں جانب کو پسند فرمایا ہے. اتباع سنت کی نیت سے اگر کوئی کرے گا تو اس کا وہ عمل عبادت بن جائے گا, اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حتیٰ کہ چیزوں کے دینے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہی ہوتا تھا. صحابہ کی مجلس جمی بھی ہوتی تھی, بیٹھی بھی ہوتی تھی, کوئی چیز تقسیم کرتے تھے, آپ تو فرماتے تھے کہ دائیں جانب سے شروع کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز کھانے کے لیے پیش کر دیے, تو ایک طرف تو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ, ایک طرف ہیں بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, دائیں جانب کوئی اور بیٹھے ہوئے تھے. غالباً دودھ جو ہے نا پیش فرمایا تھا, دودھ میں پانی ملا کر دے دیا. اس زمانے میں عرب یہ سمجھتے تھے کہ پانی میں دودھ ملا کر, دودھ میں پانی ملا کر پینے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو عربوں کا طریقہ یہی تھا, پانی ملایا پیش کر دیا حضور کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام صحابی تھے ان کی طرف بڑھا دیا, فرمایا کہ یہاں سے شروع کرو. الایمن فالایمن, الایمن فالایمن, جو پہدایا ہے وہ زیادہ حقدار ہیں. دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق کا اگر آپ مقام دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ امتی کی کوئی حیثیت ہی نہیں, عام صحابہ کی ان کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی. افضل الانبیاء بعد افضل الامہ بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اتنی بڑی جلیل القدر ہستی بیٹھی ہوئی ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ حقدار ہے, اسے شروعات کرو. چاہتے تو ان کو مقدم کرتے, ان کے احترام کے پیش نظر, ان کے مقام کے پیش نظر, لیکن فرمایا کہ حق اور اصول یہ ہے. تو اس لیے ہماری اپنی مدرسوں میں, کھانے گھروں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے, بچوں میں بھی, بچوں میں کہ بھائی اگر سب بیٹھے ہوئے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تو بڑوں کا اکرام اپنی جگہ, لیکن تقسیم میں دائیں جانب کو اختیار کرنا چاہیے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشروب نوش فرمایا, کوئی چیز آپ نے پی لی, اس کے بعد بج گئی, تو ایک طرف تو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, दूसरी तरफ बड़े बड़े साहब इकराम बैठे हुए हैं। एक लाइन थी बड़े अजील साहब इकराम की, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर है, फलाने फलाएं ये जो भी मौजूद थे उस वक्त। दूसरी तरफ एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था। तो हुजूर ने इनकी तरफ देखा, देखकर फरमाया कि भाई हक तो तुम्हारा है, अगर तुम इजाज़त दे दोगे तो मैं इन तमाम में तकसीम कर दूंगा, पहले उनको पिला दूंगा क्योंकि उनका मकाम बहुत ज़्यादा है, बड़े लोग हैं, उनके एहतराम के पेश नज़र। तो हुजूर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, तो वो सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह अगर कोई और चीज़ होती तो मैं उनको हक तकद्दुम दे देता कि भाई पहले उनको ये चीज़ दे दी जाए, लेकिन ये मकाम ऐसा नहीं है कि मैं उनको तरजीह दूँ, क्योंकि आप जो चीज़ पेश कर रहे हैं वो आपकी बची हुई है, आपका लुआब मुबारक दहन मुबारक लगा हुआ है, मैं पसंद नहीं कर सकता हूँ कि इस पर किसी और को तरजीह दूँ, इसलिए वो चीज़ आप मुझे दे दें। तो हुजूर का खाना बचा हुआ पानी या जो भी मशरूब था उन्होंने लिया और फिर तनावुल फरमाया, फिर आगे बढ़ा दिया। हुजूर से मोहब्बत भी ऐसी ही थी, लेकिन असल जो बात यहाँ पर बतलाने की है वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई जानिब अगर सहाबा इकराम होते थे तो आम सहाबा इकराम को भी बड़े बड़े सहाबा इकराम के मुकाबले में तरजीह देते थे। तकसीम में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल है तो अंदाज़ा लगाइए कि हमारे लिए इसका अहतमाम कितना होना चाहिए, खाने में, पीने में, पहनने में, दीगर चीज़ों के अंदर, जो इससे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। देने में अगर इस चीज़ का लिहाज हो रहा हो तो बहुत से हम पैसे दे देते हैं, बाएँ हाथ से पैसे निकाला हमने तकसीम कर दिया, अपना दाया हाथ देना चाहिए, दाया हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, और देने वालों में भी तो जिसको हम दे रहे हैं वो भी जो दाई जानिब हैं उनको मुकदम करना चाहिए तकसीम करते वक्त में। अब यहाँ एक उसूल, एक इल्मी बहस ये छिड़ती है कि भाई दाई जानिब क्या अल इतलाक हर चीज़ में दाई जानिब को इख्तियार करना पसंद है, अफजल है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या इसमें कोई हद है? एक अहम बहस है ये। तो इस सिलसिले में जो हमारे अकाबरीन ने एक उसूल जिक्र किया है, फरमाया कि तीन बातें हैं कि जहाँ पर दाई जानिब को इख्तियार करना है सुन्नत या मुस्तहब होगा, अगर वो नहीं है तो फिर बाई जानिब इख्तियार की जा सकती है। एक तो ये है कि जो अमल आप कर रहे हैं उस वो अमल ऐसा हो कि उसमें दायां बायां पहलू निकलता भी हो, यानी जिसको दो हाथों से या दोनों को एक साथ अंजाम न दिया जाता हो, यके बाद दीगरे काम अगर ऐसा है तो फिर वहाँ पर दायां और बायां पहलू निकलेगा, लेकिन अगर काम ऐसा है कि दोनों हाथों से बैक वक्त अंजाम दिया जा रहा हो तो वहाँ पर दायां बायां पहलू नहीं होगा, वहाँ पर तो मुबाह अमर होगा, चाहे जिस जानिब को आदमी अख्तियार कर ले। जैसे मिसाल के तौर पर वजू में आप चेहरा धो रहे हैं, ये हुक्म नहीं है चेहरे के दाएं हाथ से आप जो है ना पानी लें, दाएं जानिब को धोएं, फिर उसके बाद जो है ना बाएं हाथ से पानी लें या फिर बाएं जानिब को धोएं, दोनों हाथों से चेहरा धोने का हुक्म है। पानी लेंगे एक साथ दोनों हाथों से धोएंगे तो यहाँ दायां बायां नहीं करेंगे। तो जो अमल ऐसा है कि जिस अमल के अंदर एक अमल को पहले करना दूसरे अमल को बाद में करना ये पहलू नहीं पाया जाता, बल्कि दोनों को उस अमल को एक साथ दोनों हाथों से अंजाम दिया जाता हो तो वहाँ पर दायां बायां नहीं होगा, वहाँ पर जो है आदमी दोनों हाथों को इस्तेमाल करेगा, दाएं बाएं की तरजीह हासिल नहीं होगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कही है शुर्राह ने, शारहीन हदीस ने, कि जो चीज़ें तकरीम के कबील से होती हैं या इबादात के कबील से होती हैं, इकराम के कबील से होती हैं, तो वहाँ पर दायां पहलू अख्तियार किया जाएगा, और जो चीज़ें इबादात के कबील से नहीं हैं, तकरीम के कबील से नहीं हैं, तो वहाँ बायां पहलू होगा या बायां हाथ इस्तेमाल किया जाएगा। अब उसकी बहुत सारी मिसालें हैं जो हम आमतौर पर इसको पेश करते रहते हैं। उमूमन खाना खा रहे हैं तो एहतराम की चीज़ है, बाएं हाथ से अगर करेंगे तो ये बेइज्जती है उसकी, इसलिए यहाँ पर हुक्म ये है कि दाएं हाथ से खाना खाएं। वजू कर रहे हैं तो दाएं हाथ से जो है पहले पहले दाएं हाथ को धोए फिर बाएं हाथ को धोए। मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो ये इकराम का मामला है, पहले दाएं पांव दाखिल करें। घर में दाखिल हो रहे हैं तो पहले दाएं पांव घर में दाखिल करें। सो रहे हैं तो दाएं करवट पर आप सो जाएं वगैरह। अच्छा, इसके अपोजिट जो सूरत हाल है, मस्जिद से निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जाने के मुकाबले में निकलना एक कम दर्जे का अमल है, तो वहाँ बाएं पांव सबसे पहले निकालेंगे आप। घर में दाखिल हो रहे हैं तो ये एक एहतराम ज़्यादा है घर के अंदर, तो वहाँ पर दायां पांव, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो बाएं पांव पहले निकालेंगे बाहर फिर घर से बाहर निकलेंगे। तो बहरहाल जो चीज़ें इबादत के कबील से होती हैं, तकरीम के कबील से होती हैं, एहतराम के कबील से होती हैं, तो वहाँ पर दायां पहलू इख्तियार किया जाएगा या दाएं जानिब इख्तियार की जाएगी या दायां हाथ इस्तेमाल किया जाएगा। और जो चीज़ें तकरीम के कबील से नहीं, इसी की मिसाल ये भी है कि नाक साफ़ कर रहे हैं, ऐसे मौके पर बाएं हाथ से नाक साफ़ करेंगे वगैरह वगैरह। तीसरी चीज़ यह है कि शरीयत में कुछ चीज़ें मकसूद हैं, तकरीम के अलावा कुछ चीज़ें मकसूद होती हैं, तो ऐसे चीज़ों ऐसे मौके पर भी दाई जानिब को, दाएं पहलू को फौकियत दी जाएगी। अगर वो मकसूद नहीं है तो फिर वहाँ पर बाई जानिब को तरजीह दी जाएगी। फिर उसकी एक मिसाल जो अमूमा यहाँ इस मौके पर जिक्र की गई है वो ये है, जैसे अंगूठी पहनने का मसला है, अंगूठी पहनना। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों रिवायतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी दाएं हाथ में ही पहनते थे, बाएं हाथ में ही पहनते थे। लेकिन हनफिया ये कहते हैं कि उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं हाथ में अंगूठी ज़्यादा पहनते थे। हज़रत हसनैन का मामूल भी यही था कि बाएं हाथ में अंगूठी ज़्यादा पहनते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, गालिबन हज़रत अली भी हैं, उन हज़रत का मामूल भी यही था कि अंगूठी जो पहनते थे बाएं हाथ में पहनते थे। तो इसलिए उलमा ने इमाम शाफी के नज़दीक तो सुन्नत है दाएँ हाथ में पहनना अफजल तो वही है, लेकिन हमारे यहाँ हनफिया ये कहते हैं कि भाई दाएँ हाथ वाली रिवायत में लोग ज़्यादा है, कमज़ोर हैं वो, बाएं हाथ वाली रिवायत ज़्यादा जो है ना कभी है, तो इसलिए हमने तरजीह दी है कि बाएं हाथ में अंगूठी पहनी जाए। तो अब ये चीज़ ऐसी है कि अंगूठी कोई इबादत नहीं है, अंगूठी पहनना कोई इबादत की चीज़ तो है नहीं, और अंगूठी पहनना कोई काबिल एहतराम चीज़ तो है नहीं, एक ज़रूरत की चीज़ है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पहना है। हुज़ूर पहले अंगूठी नहीं पहनते थे, बल्कि असल में हुआ यह था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतूत जाने लगे मुख्तलिफ मुल्कों में, तो वहाँ के लोग उस ज़माने में अंगूठी दस्तखत के बगैर, मोहर के बगैर ख़त कबूल नहीं करते थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया कि या रसूलुल्लाह मसला तो ये है, तो हुज़ूर ने उस वक्त अंगूठी बनाई और अंगूठी को बतौर मोहर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, और उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। जब कोई ख़त लिखते थे तो अंगूठी का अंगूठी नक्श कर देते, उसके बाद अंगूठी पहन लेते थे। तो एक ज़रूरत के तहत में अंगूठी का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो एक ज़रूरत की चीज़, खैर नीयत नेक नीयत ही हो तो वो इबादत के जुमले में आ जाएगी, लेकिन फीनफ से ही जो है ना कोई इबादत मकसूदा है नहीं। वो जब इबादत नहीं है तो काबिल इकराम, उसका इकराम उस दर्जे का नहीं होगा। जब इकराम उस दर्जे का नहीं होगा तो एक मुबाह दायरे में होगी ये चीज़। तो अगर नेक नीयती के साथ कोई दाएँ हाथ में पहनेगा तो ठीक है, ये नाजायज़ उमूर से मुतल बहस नहीं हो रही है, जायज़ में ही कौन सा तरीका अफजल है कौन सा तरीका अफजल नहीं है उससे मुतल बहस हो रही है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई बाएँ हाथ में अंगूठी का पहनना जो है ना ये ज़्यादा पसंदीदा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर मामूल यही था, लेकिन कोई दाएँ हाथ में पहने तो बिला कराहत जायज़, इसमें कोई कराहत नहीं है। इसी पर कयास करते हुए उलमा ने आम एक सवाल आमतौर पर लोगों में यही होता है, घड़ी पहने तो किस हाथ में पहने, सवाल ये है। तो अमूमन दारुल इफ्ताह में फतवा तो यही है कि दाएँ हाथ में पहना जाए। अमूमन दारुल इफ्ताह का तो मसला यही है, यहाँ के शरिया बोर्ड के फतवों में भी अगर आप देखेंगे तो भाई दाएँ हाथ में पहन लें, क्योंकि मकसद उसका नहीं है कि औकात देखना है, औकात के जरिए नमाज वगैरह की क्या है नमाज का अंदाज़ा हो जाता है वगैरह वगैरह, नए कामों में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हमने हुक्म लगा दिया कि भाई दाएँ हाथ में पहनना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि घड़ी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो थी नहीं, तो कोई नस उस सिलसिले में मौजूद नहीं है, कोई हदीस मौजूद नहीं है उस सिलसिले में, उसका तो हुक्म तो कियासन होगा, इस्तेहादन होगा, उसको कियास किया जाएगा। कियास करेंगे तो किस पर करेंगे, आप इस्तेहाद करेंगे तो किस पर करेंगे? तो सबसे ज़्यादा करीबी जो चीज़ है उसकी, तो उलमा ने लिखी है कि कियास के एतबार से कियास की जाने वाली चीज़ अंगूठी है, उसका कियास बनता है अंगूठी पर, उसकी वदाकता के एतबार से और हयात के एतबार से और ज़रूरत के एतबार से। अंगूठी का जो अंगूठी जिस अंदाज़ की है, घड़ी भी उसी अंदाज़ की है। अंगूठी में भी नग, खैर यह एक मैं बता रही मजाक अर्ज कर रहा हूँ, उसका भी नग है, इसका भी नग है, उसका भी पट्टा है, इसकी भी पट्टी जैसी चीज़ होती है। उसके अलावा अंगूठी ज़रूरतन इस्तेमाल की जाती है, तो घड़ी भी फी नफ़्सी ज़रूरतन इस्तेमाल की जाती है। और फी नफ़्सी घड़ी का पहनना जो है ना वो पसंदीदा नहीं है शरीयत में, अंगूठी का पहनना भी फी नफ़्सी पसंदीदा नहीं है। उसकी वजह यही है कि इसमें लोहा इस्तेमाल होता है या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जीनत की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मर्द के लिए ये चीज़ें पसंदीदा नहीं हैं। तो ज़रूरत के दर्जे में ये चीज़ इस्तेमाल की जा रही है। तो इसका कियास भी बाज़ उलमा ने जो किया है वो अंगूठी पर किया है। और अंगूठी फुकाहे हनफ़ के यहाँ जो मसला है वो ये है कि बाएँ हाथ में पहनना है तो घड़ी भी बाएँ हाथ में पहनना चाहिए। इसी वजह से शेख हुसैमीन का जो फतवा है, अरब के एक बहुत बड़े आलिम दीन है, उनका फतवा भी यही है, वो भी यही कहते हैं कि बाएं हाथ में घड़ी अंगूठी भी बाएं हाथ में पहननी चाहिए, और उसूल का तकाजा यह है कि घड़ी भी बाएं हाथ में होनी चाहिए। एक और बात मैं अर्ज कर दूं, अंगूठी आमतौर पर हम पहनते हैं तो उसका नग ऊपर करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, ताकि जो है ना उसकी खूबसूरती और उससे मुतालिक जो है ना लोगों को इम्प्रेस करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी पहनते थे तो नग अंदर की तरफ होता था, उसका नग जो है अंदर की तरफ होता था, इस तरफ होता था आदमी की अपनी तरफ, क्योंकि जीनत मकसूद नहीं थी, वो ज़रूरत की चीज़ थी, तो ज़रूरतन इस्तेमाल फरमाते थे। तो घड़ी के बारे में भी उलमा ने लिखा है कि डायल उसका बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर आप उसका प्रयास करेंगे अंगूठी के ऊपर, अंगूठी का नग है किस तरफ, अंदर की तरफ, तो घड़ी का जो डायल होगा वो भी अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं। हमारा मामूल तो यही है। तो बहरहाल एक उसूल जो है, उसूली एतबार से ये एक बहस है जो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसका एक खुलासा मैंने आप हजरात के सामने जिक्र किया है। तो उमूमन तो फतवा और मसला तो यही है कि दाएँ हाथ में पहन ले तो आपको इख्तियार है कि जिस हाथ में पहनना चाहें आप पहन लें, लेकिन कियास और इज्तिहाद के एतबार से अगर आप तरजीह देना चाहते हैं तो फिर मसले की हकीकत, मसले की तफसील ये है। अब आपको जाहिर सी बात है कि इस पर अमल करना है, आप अमल कर लें। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि युहिब्बु तयम्मुन मस्तता फ़ी ज़ुहूरिही, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तक हो सके दाएँ पहलू को पसंद कर, दाएँ जानिब को पसंद करते थे, पाकी में भी, जूता पहनने में भी, कंघी करने में भी, और ख़ास तौर पर اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف آپ نے دائیں جانب کو اختیار کر کے امت کو بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے. تو ایک حدیث مبارکہ کا سبق یہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد دوسرا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے, وہ یہ ہے باب من اکل حتی شبع. یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے جو کھانا کھائے یہاں تک کہ سیراب ہو جائے. لمبی چوڑی حدیث ہے, اس کا میں ترجمہ تیزی کے ساتھ کر دیتا ہوں, پھر اس سے متعلق تفصیل آئے گی. قال ابو طلحہ لام سلیمن, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو طلحہ سے, ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ لقد سمعت رسول اللہ صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تھی ضعیفا, جو کمزور تھی. عارف فیہ الجوع, جس میں میں بھوک کو جان رہا تھا. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی آواز کو میں نے سنا تو اس میں کمزوری محسوس ہوئی مجھے, اور یہ کمزوری بھوک کی وجہ سے تھی. تو آواز کی نقاہت کی وجہ سے میں نے پہچان لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں. تو اس موقع پر فرمایا کہ فہل عندک من شیء, یعنی اپنی بیوی سے وہ فرما رہے ہیں کیا آپ کے تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے سرکار کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. تو فاخرجت اقراصا من شعیر, انہوں نے جو کی چند روٹیاں فوراً نکالی. تو اخرجت خمارا لها, پھر کپڑا جو ہے نا نکالا. فلفت الخبز ببعضه, اور پھر اس کے بعد روٹی کو جو ہے نا لپیٹ دیا اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے. جیسا عام طور پر ہمارے یہاں بھی بات کروں, معمول یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں میں روٹی لپٹی جاتی ہے, اس میں نرم بھی رہتی ہے گرم بھی رہتی ہے, کھانے میں سہولت رہتی ہے. تو سب مدست ہوتا تھا تو بھی وہ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے کپڑے کے نیچے جو ہے نا انہوں نے اس کو چھپا دیا. اور عدت نہیں بباد ہی, اور بعض کپڑے کے ساتھ جو ہے نا بعض روٹیاں مجھے دے دیں. تو ارسلت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے بھیجا ان چند روٹیوں کو دے کر. فذهبت به, تو وہ روٹیاں میں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. تو فبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا مسجد میں. ومعه الناس, اور آپ کے ساتھ لوگ بھی موجود تھے. فقمت علیہم, میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ارسلک ابو طلحہ؟ فقلت نعم, کہ ابو طلحہ نے تم کو بھیجا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں. تو فقال لطعام, تو حضور نے فرمایا کہ کیا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ تو کہنے لگے کہ فقلت نعم, میں نے کہا کہ ہاں. تو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معهم قوموا, پھر حضور نے فرمایا ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ تھے کہ کھڑے ہو جاؤ. یعنی گھر میں سے کچھ کھانا آیا ہے تو پہچان گئے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ کھانا موجود ہے. تو فرمایا کہ سب کے سب تیار ہو جاؤ. فانطلقا, چنانچہ آپ چلے. وانطلقت بین ایدیہم, اور میں بھی چلا حضور کے سامنے آگے آگے وہ چلنے لگے. حتی جئت ابا طلحہ, یہاں تک کہ میں ابو طلحہ کے پاس آیا. تو فقال ابو طلحہ, تو ابو طلحہ نے کہا کہ یا ام سلیم, اے ام سلیم, قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس, اللہ کے نبی لوگوں کو لے کر آ گئے. گھر میں تو اتنا کھانا نہیں ہے, پریشان ہو گئے کہ بھائی کھلائیں گے تو کیا کھلائیں گے, شرمندگی ہو جائے کہ کھانا اگر اتنا نہیں ہوگا. تو فاقبل ابو طلحہ, تو وليس عندنا من الطعام, حضور تو آگئے اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. ما نطعمهم, کیا ہم کھلائیں لوگوں کو؟ تو فقالت, تو ان کی زوجہ نے کہا کہ واللہ ورسوله اعلم, اللہ اور ان کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ اعتماد تھا اور حضور کے مزاج کو وہ سمجھتے بھی تھے. خواتین بعض دفعہ ذہین و فدین بھی ہوتی ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے. توکل علی اللہ بعض دفعہ جو ہے نا مردوں سے زیادہ ان پر زیادہ ہوتا ہے. تو فانطلق ابو طلحہ, تو ابو طلحہ جو ہے نا وہ چلے. حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. فاقبل ابو طلحہ, تو حضرت ابو طلحہ نے حضور کا استقبال کیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ تو یہ اچھا دونوں مل کر چلے. حتی دخل, یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نے فرمایا حلمی یا ام سلیم, آ جاؤ ام سلیم, ما عندک, تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ فاتت بذلک الخبز, تو وہ حضور کے پاس روٹیوں کو لے کر آ گئی. فامر بھی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تو ففت, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا جتنی بھی روٹیاں تھیں. وعاشرت ام سلیم عقدا لها فادمته, تو حضرت ام سلیم نے اس کے بعد کہا کہ بھائی وہاں پر جو مشکیزہ تھا, مشکیزے کے اندر گھی وغیرہ تھا, فرمایا کہ وہ جو ہے روٹیوں پر ڈال دو. تو ام سلیم نے اس کے اوپر گھی وغیرہ ڈال دیا, روٹی اور گھی ملا کر جو ہے نا بالکل اس کو ملیدے کی طرح کر دیا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا پڑھا جو کچھ کہا. یعنی حضور نے جو پڑھ کر دم کیا وہ دم کیا, پتہ چلا کہ بھی کھانے پر پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہی ہے کہ بھی کھانے پر دم کرنے کا طریقہ کیا ہے, بسم اللہ پڑھا جائے, سب سے بہتر طریقہ یہی ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ اذن لعشرة, 10 آدمیوں کو اجازت دے دو. چنانچہ 10 آدمیوں کی اجازت دے دی گئی. فاکلوا, وہ آئے اور کھا لیے. حتی شبعوا, یہاں تک کہ سیراب ہو گئے. ثم خرجوا, پھر وہ چلے گئے. ثم قال اذن لعشرة, फिर हुजूर ने फरमाया कि फिर 10 आदमियों की इजाज़त दे दो, फिर उनको इजाज़त दे दी गई, वो आए और खा लिए यहाँ तक कि वो भी सैराब हो गए। तो इस तरह जो है तकरीबन फरमाते हैं कि फ़ाकरलकौम कुल्लुहुम, तमाम के तमाम लोग जो हुजूर के साथ थे सब ने खाना खा लिया, और वशबियु, और सब के सब सैराब हो गए। वलकौम थमानून रजुलन, और उस वक्त जो हजरत अबू तलहा के मकाम पर लोग आए थे, मकान पर जो लोग आए थे वो 80 अफराद थे जिन्होंने खाना खाया था। झुनी चुनी रोटियाँ हैं और खाना खा रहे हैं, तो उसमें जो है ना 80 अफराद ने खाना खा लिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी। और खाना ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ चकलिया है, बल्कि खाना पेट भर कर खाया। और इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही बात साबित करना चाह रहे हैं कि कभी कभी खाना जो है ना वो पेट भर कर खाना चाहिए। उसूल तो यह है खाने का कि आदमी को जब भूख लगे जब खाना खाए, लेकिन अच्छा, और फिर उसमें यह है कि इससे पहले ये बात आ गई है कि खाएँ तो कितना खाएँ। और हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत भी फरमाई है कि भाई एक तिहाई आदमी को खाना खाना चाहिए, एक तिहाई खाने के लिए रखे, एक तिहाई पानी के लिए रखे, और एक तिहाई सांस के लिए रखे आदमी। तो खाने में तो असल हद यही है। तो यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात असल जिक्र करनी चाहिए वो यही है कि आदमी कभी कभी अगर सैराब होकर खाना खा ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आम मामूल इसको नहीं बनाना चाहिए। वजह उसकी यह है कि इबादत में बड़ी कोताही होती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है कि आदमी जब खाना जो खाना खाया जाता है उसके 7 दर्जे हैं। फरमाते हैं कि 7 दर्जे हैं खाना खाने के, उसका लिहाज आदमी को रखना चाहिए। बाद तो हराम है, बाद मकरूह है, बाद वाजिब है। पहला दर्जा यह है कि आदमी इतना खाए कि जिससे उसकी ज़िंदगी बच जाए, ये वाजिब है। मैं खाना नहीं खा रहा, भूख की वजह से मौत के करीब हो गया, वैसे वक्त में तो भूख की वजह से खाना कुछ भी नहीं है, आदमी के पास खिंजीर रखा हुआ है, मुर्दा रखा हुआ है। तो कुरान पाक फरमाता है कि भाई आदमी खा ले और जान बचा ले, आदम फलाइस मारे। अब तकवा आ गया इनके ऊपर और ये बचना चाह रहे हैं, और मौत हो गई तो गुनहगार होंगे शरीयत की नज़र में। तो हुक्म ये है कि ऐसे मौके पर आदमी खाना खाकर अपनी जान बचा ले। तो ये खाना खाना जिससे जान बच जाए ये वाजिब है। उसके बाद दूसरा दर्जा ये है कि खाना इतना खाए कि आदमी फ़राइज़ पर, सुन्नतों पर कादिर हो सके, ये भी दर्जा वाजिब है। यानी कमज़ोरी की वजह से, खाना नहीं खाने की वजह से, भूख की वजह से खड़ा ही नहीं हुआ जाता आदमी से, चला नहीं जाता आदमी से, नमाज नहीं पढ़ सकता, तो ऐसी सूरत में इतना कम कर देना खाना ये भी नाजायज़ है आदमी के लिए। तो कम से कम इतना खाना खाना कि जिससे उठकर फ़राइज़ को अंजाम दे सके, इबादत को अंजाम दे सके आदमी, ये भी वाजिब है। तीसरा दर्जा ये है कि आदमी उसके बाद सुन्नतों को, मुस्तहबात को अदा कर सके, नवाफिल को अदा कर सके, ये दर्जा जो है ना मुस्तहब है। और चौथा दर्जा ये है खाना खाने के बाद कि इतना आदमी खाना खा ले कि जिसकी वजह से इबादत में कोताही सुस्ती होने लगे। तो ये दर्जा लिखा है कि भाई ये मकरूह दर्जा है, ये इतना खाना खा लेना कि इबादतों में सुस्ती हो रही है, नमाज बड़ी यानी कोई नमाज के अंदर खुशू नहीं रहा, तवज्जो नहीं रही, तबीयत ही नहीं चाह रही है, सुस्ती हद से ज़्यादा हो रही है, नींद हद से ज़्यादा हो रही है, सुन्नतें जो है ना अदा करना बड़ा दुश्वार हो रहा है, फ़राइज़ का अदा करना बड़ा दुश्वार हो रहा है। तो ये मकरूह है कि जिसकी वजह से इबादतों में खलल आ जाए। और पाँचवा दर्जा ये है कि इतना खाना खा ले आदमी कि जिसकी वजह से सेहत आदमी की ख़राब होने लगे, मुतासर होने लगे, ये जायज़ नहीं है। फिर इतना खाना खाना या ऐसी चीज़ें खाना जिसकी वजह से सेहत आदमी को मुतासर हो, ये भी जायज़ नहीं है। खैर, ये फिर 4 और 5 में फिर जो है उसी तफसील, यानी 2 दर्जे और हैं, लेकिन हासिल उनका यही है कि 5 दर्जे मजमू एतबार से बनते हैं। तो 2 दर्जे हैं जिसमें आदमी के लिए खाना खाना वाजिब है, 1 दर्जा मुस्तहब का है, 1 मुबाह का भी, आदमी अगर तिहाई तक खाना खा ले आदमी तो, या उससे ज़्यादा खाना खा ले तो मुबाह है। फिर 1 मकरूह का दर्जा है, और 1 दर्जा वो है कि जिसके अंदर आदमी के लिए खाना खाना हराम है, और वो ये है कि आदमी के लिए खाना मुजिर हो जाए, इतना खाना खाना ये पसंदीदा नहीं है, इस्लाम के अंदर जायज़ भी नहीं है। इस हदीस पाक से एक बात जो मालूम होती है वो यही मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकत का ख़ास मामला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। और ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं, और वो बरकत जिससे मिलती है उसका जो हदीस मुबारक में जिक्र मिल रहा है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ना था उस वक्त पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत दी उसकी वजह से। तो उलमा ने यह बात लिखी है कि भाई खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बरकत अता फरमाते हैं, फिर इसका अहतमाम करना चाहिए। खाने से पहले, पीने से पहले जो चीज़ आदमी के पेट में जा रही है अल्लाह का नाम लेना चाहिए, ताकि पेट में जाने के बाद अल्लाह के नाम के असरात जो है ना वो पेट के अंदर मुंतकिल भी होंगे। बड़ी बरकत होती है अल्लाह के नाम से, बल्कि अगर देखा जाए तो अल्लाह ही का नाम सब कुछ है। यहाँ पर कुरान पाक शुरू हो रहा है तो हुक्म यही है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से इसकी शुरुआत करनी है आपको। और हर काम के अंदर इस बात का हुक्म दिया गया कि अल्लाह का नाम लेकर उसको शुरू किया जाए। खाने में भी वही है बिस्मिल्लाह, बल्कि अच्छे काम हो या बुरे काम हो, आदमी जिनको पसंद करता हो वो भी, जिनको पसंद नहीं करता वो भी। आदमी अगर खाना खा रहा है तब भी, खाने से फारिग हो गया तब भी बिस्मिल्लाह है, खाना खा रहा है तब भी बिस्मिल्लाह है, बैतुल खला जा रहा है तब भी बिस्मिल्लाह ही है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, बैतुल खला से निकल रहा है तब भी वही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। तो इसलिए खास तौर पर इस बात का अहतमाम करना चाहिए कि भाई खाने से पहले या किसी भी काम से पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र जो है ना आदमी को जरूर अदा करना चाहिए। इसकी बड़ी बरकतें जो है ना आदमी देखता है फिर शाह महदि। और ये खाने के आदाब में से भी है, काम करने के आदाब में से भी ये है कि काम शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का इस्म, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाए। आदाब तो बहुत सारे हैं और असल बरकत उसी वक्त आदमी को हासिल होती है, आदाब की रियायत से बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। भाई एक चीज़ तो ये है कि शाही के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं, और एक ये है कि वो चीज़ ज़रूरी तो नहीं होती लेकिन आदाब के दर्जे की होती है। नमाज पढ़ लें आप, नमाज के अंदर ज़रूरी है रुकू करना, सदा करना, क़याम करना, तिरत करना, इसके बगैर नमाज ही नहीं होगी आपकी, वो तो ज़रूरी है ही। और एक ये है कि नमाज से पहले आप कपड़ों को साफ़ कर रहे हैं, नमाज से पहले आप अच्छे तरीके पर आपने वजू कर लिया, नमाज से पहले आपने मुराकबा करके अपने जहन को बना लिया कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो रहा हूँ, नमाज से पहले जो है ना आपने जगह को अच्छे तरीके पर पाक कर लिया, खुशबू आपने लगा ली, इमामा आपने बांध लिया, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आदाब की कबील से होती हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले आदमी जब आदाब की रियायत करता है अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाते हैं। फिर इसका भी खास एहतमाम होना चाहिए, जो ज़रूरी दर्जे की चीज़ें हैं उनका भी एहतमाम होना चाहिए, जो आदाब की दर्जे की चीज़ें होती है उनका भी एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से असल बरकत डालते हैं। बरकत के तो खैर बहुत सारे असबाब हैं और आमतौर पर होता यही है, बरकत का माना तो हम यही समझते हैं कि कसरत हो, कसरत जो है वो बरकत नहीं होती, और बरकत का मफहूम हम समझते भी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ा और वसी मफहूम उलेमा ने इसका लिखा है कि भाई एक बरकत का मफहूम असल में ये होता है कि जिस मकसद के लिए वो चीज़ बनाई गई, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है, उस मकसद में उसका उसके लिए वो फ़ायदेमंद हो तो वो चीज़ बरकत वाली होती है आदमी के लिए। अगर वो फ़ायदेमंद नहीं है तो बरकत वाली नहीं होती है। फिर आदमी के लिए कार आदमी ने खरीदी है, बनाई गई है ताकि उस पर सवार हो और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, सफ़र जो है ना आसानी के साथ तय हो सके। अब वही कार है सुबह उठते स्टार्ट ही नहीं हो रही है, अगर रोजाना मैकेनिक करेगा ले जाना पड़ रहा है उसको, तो जाहिर सी बात है कि वो सहूलत की चीज़ है, लेकिन आदमी कहेगा कि मनहूस चीज़ जो है ना मेरी ज़िंदगी में आ गई और क्या है, रोजाना का लकलका लगा हुआ है इसके पीछे। तो जिस मकसद के लिए चीज़ को बनाया जाता है उस मकसद में उसका अगर इस्तेमाल होने लगा, उस मकसद के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाए, तो बरकत की हकीकत ये है कि वो चीज़ इंसान के लिए बरकत बन जाती है। अब किसी भी चीज़ में अगर आप देख लें, घर है, घर के अंदर सारी चीज़ें आदमी ने हासिल कर ली, भाई घर है, एयर कंडीशन आदमी ने लगा लिया, एसी भी उसमें लगा लिया, गद्दे भी बड़े महंगे महंगे है और बड़ा पुरसकून माहौल आदमी ने बना लिया, खुशबुआ भी जो है ना बना ली, अब लगा ली है, मुअत्तर कर दिया पूरे के पूरे घर को, नौकर चाकर सब कुछ मौजूद है, जाकर बिस्तर पर लेटा नींद ही नहीं आ रही है, बाहर निकल जाएगा थोड़ी देर के लिए, कोई बाहर जाकर सुकून हासिल करके आऊँगा। हालांकि बाहर से ज़्यादा महंगी चीज़ें तो घर में लगी हुई हैं, उसके लिए पुरसकून माहौल घर में है, उसके अंदर नौकर चाकर उसके घर में मौजूद है, कहेगा कि भाई यहाँ नींद नहीं आ रही, गोलियाँ भी खा रहे हैं उसके पीछे, गोलियों पर गोलियाँ खाए जा रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही, दिन में नींद नहीं आ रही। तो जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए वो चीज़ बनाई जाती है, उस मकसद में कामयाबी हासिल कर लेना, उस मकसद में उस चीज़ का इस्तेमाल हो जाना, ये बरकत है। और एक बरकत ज़ाहरी होती है और एक बरकत बातिनी होती है। शाह वली मुहदिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहस का खुलासा ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहरी असबाब इख्तियार करने की वजह से ज़ाहरी तौर पर बरकत अता फरमाते हैं, बातिनी असबाब इख्तियार करने की वजह से बातिनी बरकत अता फरमाते हैं। ज़ाहरी बरकत अलग होती है, बातिनी बरकत अलग होती है। उसकी एक मिसाल ये है समझने के लिए, जैसे खाना खाने से पहले हमको हुक्म दिया गया कि भाई हाथ धोएं। अब हाथ धोने का हुक्म बड़ा आसान है, आजकल तो चमचे आ गए, हाथ धोने का मसला ही नहीं है, सीधा उठाया चमचा हमने खाना शुरू कर दिया। गैरों का तरीका यह है कि सुन्नत से ऐसे महरूमी हो गई पता ही नहीं चला हमको। गैर का तरीका आप देख रहे हैं अपनाने में, सुन्नतों से ऐसी महरूमी होती है कि आदमी सुन्नत को अपनाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता। चमचे की ज़रूरत है, हाथ क्या धोऊँ, चमचे से मैं खाना खा रहा हूँ तो हाथ को धोने की ज़रूरत क्या है। तो इस वजह से कहा जाता है कि भाई ये फासिक और फाजिर जो कौमें होती हैं इनकी मुशावरत इख्तियार नहीं करना है आपको, उनमें नहूसत होती है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आदमी को सुन्नतों से महरूम कर देते हैं। फिर एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, चमचे आ गए, कांटे आ गए, उसके जरिए खा रहे हैं, छुरी भी है, छुरी से काटते हैं, एक हाथ से काटते हैं, एक हाथ से खा रहे हैं, फिर उसमें बाएं हाथ भी इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी हो। तो खाने से पहले हमको हुक्म दिया गया कि खाना खाना है और उससे पहले हाथ धोना है। और उलमा ने लिखी है ये बात कि बड़ी अल्लाह तबारक व तआला खाने से पहले हाथ धोने और खाने के बाद हाथ धोने इसका एहतमाम करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कर्जदारों के कर्ज को भी अदा फरमा देते हैं, अंदाज़ा नहीं होता। बाद अकाबरीन का मुजरब अमल ये बताया गया, बरकत ताम अलवुज़ू, रिवायत कमज़ोर है लेकिन है हदीस में कि बरकत ताम अलवुज़ू क़ब्लहू वलवुज़ू बादहू, खाने से पहले हाथ धो लेना ये खाने में बरकत का ज़रिया है, खाने के बाद हाथ धो लेना या खाने में बरकत का ज़रिया है, हदीस में है। तो ज़ाहरी तौर पर हाथ धोते हैं, मिसाल के तौर पर हम तो जरासीम हमारे हाथ के धुल जाते हैं, हाथ अगर नहीं धोते हैं तो वही खाना जो हमारे, तो डॉक्टर से आप पूछें कितने जरासीम हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, और फिर मैल कुचैल अगर हाथों में लगा हुआ तो वो भी पेट के अंदर चला जाएगा, अब उसकी वजह से पेट में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो माइल कुचैल पेट में गया है, जो जरासीम आदमी के पेट में गए हैं, तो पेट में जाने के बाद वो इंसानी निज़ाम को, मैदे के निज़ाम को, आदमी के अंदरून के निज़ाम को मुतासर करेंगे वो चीज़ें। आदमी की सेहत उसकी वजह से मुतासर होगी, फिर अंदरून आदमी का उससे मुतासर होगा। तो ज़ाहरी बरकत ये है कि आदमी उन बीमारियों से महफूज होता है, हमको पता नहीं है। ज़ाहरी बरकत ही तो है कि अब उसके पास पेट अगर ख़राब नहीं हुआ है तो डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत नहीं है तो आदमी की हिफाजत हो गई है अल्लाह तबारक व तआला, यानी इस सुन्नत पर अमल करने की वजह से आदमी महफूज हो गया, बीमारी नहीं आई है, तो बहुत बड़ी आफियत की बात है उसके लिए। और डॉक्टर के पास सलाह आएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई पता नहीं कितनी बीमारियां पैदा हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता होते 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 बाद दफा ऐसा होता है बीमारियां हो रही हैं, फिर उसके बाद जाने के लिए वक्त अलग लग रहा है, फिर उसके बाद जाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दवाइयों के लिए और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो लिखा है कि भाई एक चीज़ है, ज़ाहरी तौर पर आदमी हाथ धोने को इख्तियार कर रहा है, हाथ धो रहा है, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो आदमी को महफूज फरमाते हैं, दीगर चीज़ों से उसका आदमी को एहसास नहीं होता, यह ज़ाहरी बरकत है। और बातिनी बरकत यह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर आदमी खाना खाता है तो वो खाना बरकत वाला हो जाता है। एक तो ये है कि जिस खाने का जो मकसद है वो हासिल होता है अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने की वजह से। एक खाना है आदमी के पेट में जाएगा, कुछ एक खाना वो होता है जो आदमी के पेट में जाए और वो खाना नेकियों पर तकवियत का जरिया बने, और एक खाना वो है कि जो आदमी के पेट में चला जाए और वो आदमी को सीधा जो है ना फिल्म के लिए लेकर चला जाए। खाना एक आदमी वो है जो खाना खा रहा है और मजीद आता है चलकर, वो खाना बरकत है उसके लिए, उसके लिए रूहानी तरक्की, वो खाने की वजह से उसको नमाज पर ठहरने की कुव्वत हासिल हो रही है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की कुव्वत हासिल हो रही है, अल्लाह की तरफ तवज्जो की कुव्वत उसको हासिल हो रही है। तो ये खाना आदमी के लिए रूहानी तौर पर तरक्की और बरकत का जरिया है, और ये उसके लिए खाना इबादत बन रहा है, ये खाना उसके लिए मुआविन बन रहा है। और एक आदमी वो है जो खाना खाकर पेट भर कर सीधा निकल जाता है बाहर गुनाह करने के लिए, चोरी करने के लिए, धोखे के लिए, किसी और मकसद के लिए, बदकारी के लिए चला गया। अब देखिए कि खाना तो वही है, दोनों खाकर होटल से निकले, एक इधर गया एक उधर गया। अल्लाह का नाम लेंगे तो रूहानी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला खाने में ही असरात रखेंगे कि आदमी को इस तरह मुतवज्जे करेंगे, फिर वो नेकियों की तौफीक उसकी वजह से मिलेगी, फिर नेकियों में रग़बत उसकी वजह से मिलेगी। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात मिलती है, एक साहब ने उनकी दावत की, खाने के लिए गए, दस्तरखान पर बैठे, जैसे ही खाना निवाला मुँह में डाला, एक निवाला पेट के अंदर गया था, बाहर निकल कर आ गए दावत से। लोगों ने कहा कि हजरत ये क्या हुआ, तो कहने लगे कि भाई ये खाना सही नहीं था, हलाल पैसों का खाना नहीं है, ये खाना हराम है। कहने लगे कैसे कैसे, तो कहने लगे कि इस खाने को खाने के बाद जो सूरत हाल मेरे अंदर पैदा हो गई, अजीब वगरीब किस्म की नहुसत और जुल्मत मैंने अपने दिल में महसूस की है। और फरमाते हैं कि 2 महीने तक उस एक लुकमे की नहुसत की वजह से मेरे दिल में बुराई के ख्याल आ रहे थे, 2 महीने तक मुसलसल बुराई के ख्याल उसकी वजह से आ रहे थे, दिल में एक किस्म की कुदूरत और जुल्मत महसूस हो रही थी। उलमा लिखते हैं कि भाई आदमी जितना ज़्यादा पाकीज़ा होता है, पाकीज़ा दिल होता है, तो गुनाहों के असरात महसूस उसको होते हैं। पाकीज़ा दिल अगर नहीं, गुनाहों जैसे आदमी के कपड़े सफ़ेद हैं, अब अगर ऊपर से नीचे तक धब्बे लगे हुए हों, एक धब्बा लग गया तो पता नहीं चलेगा उसको, साफ़ कपड़े अगर मौजूद हैं, एक धब्बा अगर लग गया तो पता चल जाएगा कि भाई क्या है, पूरे महसूस होगा, अलानिया महसूस होगा कि आदमी पूरे कपड़े को नीचे धब्बे को देखेगा। तो यही सूरत हाल हमारे दिल का होता है कि दिल अगर गुनाहों से धुला हुआ होता है, पाकीज़ा होता है, तो एक एक छोटी चीज़ का, छोटे छोटे गुनाह का, छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी नापसंदीदा चीज़ों का असर दिल महसूस करता है, लोग देखते भी हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतों में से है ना, अल्लाह ने ऐसी बसीरत अता फरमाई थी, उनकी करामत ये थी, आदमी जिना करके आता तो देख कर पहचान लेते थे कि भाई ये जिना करके आ रहा है, बाद मरतबा बोल दिया था उन्होंने बाद सहाबा इकराम को, और इसलिए मेम्बर बाद लोग आ जाते हैं जिना करके, सहाबा परेशान हो गए कि इस तरह के वाक़ात हो जाते हैं, इंसान में बशरी गलती हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर फरमा देते हैं। तो बाद में जो अर्ज कर रहा था वो ये थी कि बातिनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला इस तरह आदमी को जो है, यानी रूहानियत ऐसी आदमी की तरक्की होती है, बातिनी ऐसी बरकत होती है कि अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब यही खाना है जो खा रहा, इबादत मिल गई तो आखिरत में ज़खीरा और अजर बन गया उसके लिए, इस खाने की वजह से नमाज़ें मिली, ये खाना आदमी के लिए अजर का बाइस बन गया, सबक बन गया, ये बातिनी बरकत है। और पता नहीं इतनी कितनी सारी जो है ना इसके तहत में चीज़ें आती हैं, कितनी इसकी हिकमतें होती हैं, कितनी इसकी जो है ना सआदतें अल्लाह तबारक व तआला मरहमत फरमाते हैं। हज़रत शाह वली मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात का खुलासा यही है कि ज़ाहरी असबाब को इख्तियार करने की वजह से ज़ाहरी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं, और बातिनी असबाब को इख्तियार करने की वजह से बातिनी बरकतें आदमी को नसीब होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही इल्म सही की तौफीक नसीब फरमाए, इंशाअल्लाह अगला भी आइंदा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा।